आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम देवांगना द्विवेदी एंड हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का फिफ्थ चैप्टर, जिसमें आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम पेज नंबर 47 एंड फ्रॉम द टॉपिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मतलब ये जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, ये हमारे भारत में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि ये जो इलाके हैं जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये गर्मी के टाइम पर, गर्मी का जब सूखा मौसम आता है बिल्कुल, तब ये 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, झड़ा देते हैं, अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। इनमें से आर्द्र या नम्न पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मतलब इनको किन चीजों पर कैटेगराइज किया गया है, यहाँ पर पानी की जो उपलब्धि है उसके हिसाब से किया गया है और यहाँ पर जो इन फॉरेस्ट रीजन्स में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जिस प्रकार का यहाँ का वेदर होता है, ह्यूमिडिटी कितनी होती है, उसके हिसाब से इनको पर्णपाती वनों में कैटेगराइज किया गया है। और इनको वहाँ के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्व राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। मतलब इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं ये इन एरियाज में पाए जाते हैं। मतलब जितने भी हमारे ईस्टर्न एरियाज होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज होते हैं, हिमालय के जो गिरिपाद प्रदेश होते हैं, मतलब नीचे का जो हिस्सा होता है, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाट और पूर्वी ढालों पर ये पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। इन जो फॉरेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो यहाँ पर पेड़ हैं, उनके यहाँ पर हमें नाम बताए गए हैं। बांस, साल, शीशम, ये सारी चीजें यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के ट्रीज हैं। कम टू थर्ड पैराग्राफ। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। देखिए, ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो कि 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में, जहां पर बारिश होती है। और ये मेनली आपको जो प्लेट्यू रीजन्स होता है वहां पर आपको मिलते हैं। और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो कौन कौन से हैं? सागौन, साल, पीपल और नीम। तो यहाँ पर ये सारे जो पेड़ हैं ये उगते हैं। इन क्षेत्रों के लिए बहुत बड़े बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। मतलब ये जो फॉरेस्ट रीजन है इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसे वाइप आउट कर दिया गया है फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए, फसल उगाने के लिए, और जो बाकी का भाग है उसको ग्रेजिंग लैंड बना दिया गया है। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं चित्र 5.4 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसमें जो पेड़ हैं ये अपने पत्ते झड़ा रहे हैं गर्मी के मौसम में। राइट साइड आ जाइए। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। मतलब इन जंगलों में जो मेन जो एनिमल्स हैं उनके नाम बताए गए हैं कि सुअर, हिरण, शेर, बाघ, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। और कुछ अलग अलग टाइप की जो बर्ड्स की जो कैटेगरी है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। अब आ जाइए कटीले वन तथा झाड़ियों पर, जिसको बोला जाता है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। अब आप सोच ही सकते हैं कटीले वन और झाड़ी के नाम से ही कि ये कहाँ पर पाए जाते होंगे, ये डेजर्टेड एरिया में पाए जाते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिम भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। मतलब ये हमारे भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये वाले जो जंगल या फिर जो आप इसको वेजिटेशन बोलोगे, जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। और वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, वहाँ पर बहुत सारे कटीले पौधे होते हैं और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार का जो वेजिटेशन है, ये आपको ज़्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा, जिसमें गुजरात आता है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ भाग इसमें सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी, कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। मतलब ये सारी यहाँ की जो प्लांट स्पीशीज हैं, वो कुछ प्लांट स्पीशीज हैं, जैसे हम खजूर बोलते हैं, जो नागफनी होती है, ये सब यहाँ की प्लांट स्पीशीज हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं, जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ी और कटीले पादप पाए जाते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये वन ना बहुत ज़्यादा बिखरे हुए होते हैं, आपको जंगल जैसा लगेगा भी नहीं। जैसे यहाँ नीचे फिगर 5.5 में कटीले वन तथा झाड़ियाँ दिखाया हुआ है, तो कितने दूर दूर पे लगा हुआ है ये। तो यहाँ क्या होता है, फैले हुए होते हैं बहुत सारे पेड़, और इनकी जो रूट्स होती है ना, ये वाटर में, जो नीचे वाटर में नहीं, नीचे अंडरग्राउंड इतनी ज़्यादा डीप पेनिट्रेटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा नीचे, बहुत ज़्यादा गहरी गहराइयों में चली जाती है पानी को तलाशते हुए, और ये चारों तरफ फैली रहती हैं। यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं, वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो सके। अब पिक्चर के नीचे आइए। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। तो इन जंगलों में ये सारे जानवर पाए जाते हैं। अब आ जाइए पर्वतीय वन पर, जिसे माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। मतलब जितने भी ये माउंटेन रीजन्स होते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से और जो इतनी ज़्यादा ऊंचाई होती है, तो उसकी वजह से वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा हमें अलग दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार हमें जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ के प्रदेशों से अगर हम टुंड्रा वेजिटेशन के फॉरेस्ट को देखेंगे, तो हमें जितना अंतर दिखता है, उतना ही हमें पर्वतों के पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। जितने ऊंचाई पर हम जाएंगे, उतना ज़्यादा वेजिटेशन कम होता जाता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 48 पर। यहाँ पर चित्र 5.6 पर्वतीय वन दिया हुआ है आपको। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। मतलब 1000 से 2000 मीटर की जो ऊंचाई है, वहां पर इस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से टाइप के ट्रीज होते हैं, ओक और चेस्टनट। फिर 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। फिर अगर आप 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले एरिया में जाएंगे, तो आपको ये नुकीले पत्तियों वाले वहां पर पेड़ देखने को मिल सकते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। ये जो पेड़ होते हैं, ये हमारे हिमालयन रीजन्स का जो साउथ का एरिया है, वहां पर पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। मतलब अगर ज्यादा अधिक ऊंचाई होती है, तो वहां पर ग्रासलैंड्स मिलते हैं आपको, पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, ग्रासलैंड्स मिलेंगी। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनीपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। मतलब 3600 मीटर से अधिक जहां पर आपको जाने जाओगे तो वहां पर आपको शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेगा। यहाँ के जो मैदान होंगे यहाँ पर आपको अल्पाइन अल्पाइन काइंड ऑफ जो वेजिटेशन है वो मिलेगा। उसके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर बताए हुए हैं सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च, जो कि यहाँ की मेन जो ट्रीज की स्पीशीज है। उसके बाद जैसे जैसे आप और ज्यादा ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे ये जो पेड़ पौधे हैं ये बहुत छोटे होते चले जाएंगे और ये झाड़ियों का रूप ले लेते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशु चारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लिचन, घास, तुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। मतलब ये जो छोटे छोटे से जो वेजिटेशन होते हैं घास वगैरह के, ये जो वहाँ के गुज्जर बकरवाल जो होती है वहाँ की जो ट्राइब्स होती हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है अपने एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आईबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो रीजन होता है यहाँ पर आपको ये सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। अब आ जाइए मैंग्रोव वन पर, जिन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है। यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। ज्वार भाटा एक टाइप की लहरें होती है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। तो ये उन जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं वहां की ये बहुत ज्यादा मेन फॉरेस्ट है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। वनस्पति है एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। मतलब जब मिट्टी और जो रेत होती है वो जितने भी कोस्टल एरियाज पर जब इकट्ठी हो जाती है तो वहां पर ये घने जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं इनकी नेचुरल वेजिटेशन शुरू हो जाती है, वहां पर रहती है। इनकी जो पौधों की, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो पानी में डूबी रहती हैं। आप अगर गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के जो डेल्टाज हैं वहां पर इसी टाइप के आप फॉरेस्ट देखेंगे और ऐसी ही वेजिटेशन आपको वहां पर देखने को मिलेगी। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वन पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योआड़, वमेंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा होता है वहां पर जो सुंदरी वृक्ष, सुंदरी पेड़ जो पाए जाते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, काफी ज्यादा मजबूत लकड़ी के होते हैं जो वहां पर एक्सट्रैक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पज की वजह से। और नारियल, ताड़ इस टाइप के भी कुछ वृक्ष होते हैं जो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। मतलब यहाँ का इस फॉरेस्ट का जो सबसे मेन एनिमल है, जो मतलब शान है इस एनिमल की, वो रॉयल बंगाल टाइगर है। उसके अलावा और भी कुछ कुछ जानवर होते हैं यहाँ पर, जैसे कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप जो कि इन जंगलों में आपको मिलते हैं। नाउ कम टू दिस ब्लू बॉक्स, आओ विचार करें, यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं, अगर ऐसा हुआ तो हम मानव लोग, हमारे मानव जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और हम लोग भी जीवित नहीं रह पाएंगे। क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसलिए जरूरी है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होना जरूरी है। देखिए, जब भगवान ने हमारी पृथ्वी को बनाया होगा तो कुछ सोच समझ कर बताया बनाया होगा कि एक साइकिल चलते रहना चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर कुछ लोग जो बोलते हैं कि नॉनवेज खाना लोग क्यों खाते हैं, छोड़ दें, नहीं खाना चाहिए, अगर लोग नॉनवेज खाना छोड़ देंगे, मान लीजिए अगर किसी ने चिकन खाना छोड़ दिया तो चिकन की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो हेंस है उसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हमको खाने को नहीं मिलेगा कुछ भी। ओके, तो इसी तरीके से हमें पृथ्वी में जानवर भी चाहिए और पेड़ पौधे भी चाहिए। अब आ जाइए वन्य प्राणी पर। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब हमारा जिस तरीके से हमें नेचुरल वेजिटेशन इतना अच्छा हमको मिला है हमारी कंट्री में, उसी तरह से हमारा जो एनिमल साइड है, जो एनिमल किंगडम है जो हमारा, वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 90,000 स्पीशीज आपको मिल सकती है एनिमल्स की, और 2,000 से अधिक आपको यहाँ पर पक्षियों की प्रजातियाँ मिलेंगी। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियाँ हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। मतलब अगर हम पूरे वर्ल्ड का देखें तो हमारे यहाँ जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो पूरा 13% है पूरे वर्ल्ड का। फिर यहाँ पर हमें मछलियों की भी 2,546 प्रजातियाँ, स्पीशीज देखने को मिलती है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 12% अकाउंट करती है। और आपको यहाँ पर 5 से 8% पूरे अगर हम विश्व का देखेंगे तो उभयचारी मतलब रेप्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे, आपको मैमल्स देखने को मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें, ये सारे जानवर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। नाउ कम टू दिस ब्लू बॉक्स, औषधीय पादप। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2,000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 3,052 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि हमारा जो कंट्री है इसमें बहुत पुराने टाइम से ही हम अपने यहाँ की जो जड़ी बूटी और मसाले हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और आयुर्वेद ने लगभग 2,000 ऐसे प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दिया है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, बहुत सारी बीमारियों में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जिसमें से 500 तो हम प्रयोग में भी ला रहे हैं, मतलब 500 जो स्पीशीज हैं प्लांट्स की उनको हम यूज भी कर रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ की जो लाल सूची है, रेड बुक जो है, रेड बुक डेटा है, उसके अंतर्गत उसने 352 पादपों की गणना की है जो कि एंडेंजर्ड है, मतलब कि खत्म होने वाली है, और 52 जिसमें से जो है वो संकटग्रस्त हो चुकी है बिल्कुल, मतलब उन्होंने 352 की गणना की है जो कि हमारे भारत से है, उसके बाद उसमें से 52 जो है एंडेंजर्ड है, जो खत्म होने की कगार पर है, और 49 ऐसी स्पीशीज हैं जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। अब कुछ यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो हम प्रयोग में लाते हैं उनके नाम यहाँ नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला है सर्पगंधा। यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। तो मतलब जो क्लॉटिंग हो जाती है ना उसको खोलने के लिए ये यूज हुआ होता है, और ये सिर्फ यहाँ हमारी कंट्री में ही पाया जाता है। सेकेंड, जामुन। पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है, और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह, डायबिटीज रोग में सहायता करता है। तो मतलब ये डायबिटीज और जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है, डायबिटीज से निदान दिलाता है। थर्ड है अर्जुन। ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। तो ये जो अर्जुन जो पौधा होता है उसके ताजे पत्ते का अगर रस निकालो तो कान का जो दर्द होता है उसमें डालने से वो ठीक हो जाता है, और दूसरा ये क्लॉटिंग के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। फोर्थ नंबर पे है बबूल। इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। इसके जो पत्ते होते हैं जो हमें आंख के नीचे फुंसी हो जाती है, कई बार आप लोगों को हुई होगी, उसकी वजह से अगर आप रात में सो तो सुबह पूरे आंख में मतलब वो पूरा वो कीचड़ जम जाता है और फिर आंख नहीं खुलती है, बहुत पेन होता है, तो इसकी पत्ती उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और इसमें से जो गोंद निकलता है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिफ्थ है नीम। जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है, मतलब ये एंटीसेप्टिक माना जाता है, और नीम का यूज़ तो आज भी बहुत सारी मेडिसिनल चीज़ों में हो रहा है, मेडिसिन में हो रहा है, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हो रहा है। नाउ सिक्स्थ है तुलसी पादप। जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है, और हम घर में भी इसमें तुलसी का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर खांसी वगैरह चल रही है तो लोग तुलसी के पत्ते तोड़ के खा लेते हैं। फिर इसमें दिया हुआ है कचनार। फोड़े, अल्सर व दमा रोग के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अगर आपको कहीं अल्सर हो गया है इसमें, या फिर इसकी जो जड़ है पौधे की उसको अगर आप इनटेक करोगे तो आपकी इम्यूनिटी लेवल भी काफी अच्छा रहता है, और कहीं पर अगर आपको अल्सर या अस्थमा का प्रॉब्लम है तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। अपने क्षेत्र में औषधीय पादपों की पहचान करो, कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारियों के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा विनाश रोका जा सके? तो ये आपको बताना है। और क्या ये आप बता सकते हो कि क्या हम ये जो दिन ब दिन फॉरेस्ट को काट रहे हैं, जिस तरीके से हमारा नेचुरल वेजिटेशन खत्म हो रहा है, क्या हम उसको रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। अगर हम एक पेड़ की बजाय एक पेड़ काटें तो हम 10 पेड़ लगाएं, तो इसकी वजह से हम रोक सकते हैं। नाउ कम टू दिस पैराग्राफ जो कि राइट हैंड साइड दिया है। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा आसाम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। मतलब हमें बताया जा रहा है कि इस रीजन के जो मेन एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो वन्य प्राणी हैं हमारे यहाँ के वो कौन कौन से हैं। तो जो मैमल्स हैं उसमें सबसे मेन एनिमल है जो कि एलिफेंट है, जो कि कर्नाटक, केरल और आपको उष्ण तथा आर्द्र वनों में मिलेंगे। उसके बाद वन हॉर्न राइनोसोरस है जो आपको असम और बंगाल की दलदली क्षेत्रों में मिलेंगे। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नील गाय, चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब जो कच्छ का रण है और जो थार डेजर्ट है वहां पर आपको भारतीय भैंसा, नील गाय, छोटा मृग, इस टाइप के कुछ जानवर देखने को मिलेंगे। और भी काफी अलग अलग टाइप के जानवर हैं और बंदरों की बहुत ज्यादा अलग अलग स्पीशीज है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नाउ कम टू दिस स्पीच बॉक्स। क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारे यहाँ का है वो 1972 में उसको लॉन्च किया गया था। इस पिक्चर पे आ जाइए, यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है आपको। क्या आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि किस प्रकार का वन है? इस चित्र में आप कितने प्रकार के वृक्षों के पहचान कर सकते हैं? अपने क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति तथा इन वनस्पतियों में आप किस प्रकार की समानता असमानता पाते हैं? तो ये माउंटेनियस रीजन्स के फॉरेस्ट हैं। अब बाकी के जो दो क्वेश्चन है उसको आपको पढ़ के बताना है कि आपके एरिया में जो पेड़ पौधे हैं उनसे ये पेड़ पौधे किस तरीके से अलग हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। मतलब भारत ही हम पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का सिर्फ एक ऐसा देश है जहां पर शेर और जो बब्बर शेर है वो दोनों पाए जाते हैं। हमारे यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है और हमारे यहाँ लायन भी मिलता है। प्राकृतिक स्थलवास जो है जिसे हम बोले तो वो गुजरात में जो गिर जंगल है वहां पर है। यहाँ पेज नंबर 50 पर आप देखें चित्र 5.8 में वन्य प्राणी का निचय, मतलब कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। वन्य प्राणी अभयारण्य मतलब जो नेचुरल इकोसिस्टम बनाते हैं ना, मतलब जंगल जैसा पूरा इलाका करके रखते हैं ताकि वहां पर कंजर्व कर सके वाइल्ड लाइफ को, तो वो अलग है। सेंचुरी और पक्षी अभयारण्य अलग है, बर्ड सेंचुरीज अलग है और नेशनल पार्क्स अलग है। तो अलग अलग एरियाज में ये गिवन है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। मतलब जो बाघ है ये आपको झारखंड में दिखेंगे, झारखंड के जंगलों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में, हिमालय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। और जो बिल्ली जाति के यानी कि कैट फैमिली के जो एनिमल्स हैं उसमें से तेंदुआ भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि शिकारी जानवरों में बहुत ज्यादा मेन होते हैं। एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर जहां से हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक जगह के नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करता है। तो उसमें सबसे पहले हमने लैंड के बारे में पढ़ा था, उसमें सबसे रिलीफ के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट था लैंड। लैंड का क्यों इफेक्ट पड़ता है, जिस तरीके का लैंड होगा, जिस तरीके का क्रस्ट होगा, उसी के हिसाब से वहां का नेचुरल वेजिटेशन होगा। उसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर अनइवन माउंटेनियस एरिया है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर आपको कम पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे और ऊबड़ खाबड़ एरिया में काफ़ी कम वेजिटेशन देखने को मिलेगी। उसी के अपोजिट में अगर हम देखें तो हमें जितना भी हमारे जितने भी नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा घने पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर लेवल लैंड होती है और वहाँ पर जो रूट्स की कैपेसिटी होती है सॉइल को होल्ड करके रखने की वो काफ़ी अच्छी होती है। इसकी वजह से वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा घने पेड़ पौधे मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू माउंटेनियस एरियाज। फिर अगर आप इसी तरीके से अगर आप मरुस्थलीय एरिया में जाएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेतीली मिट्टी होती है, वहाँ पर आपको ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे जिसकी बहुत ज़्यादा कटीली झाड़ियाँ होंगी, बहुत कटीली छोटी छोटी पत्तियाँ होंगी और रूट्स उसकी बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेटेड होंगी, तो वहाँ का लैंडफॉर्म इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा पॉइंट आ जाता है मृदा यानी मिट्टी। किसी जगह की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जैसे कि जितने भी नदियों के पास के जितने भी क्षेत्र होते हैं वहाँ की बहुत उपजाऊ होती है, तो वहाँ आप बहुत अच्छे नेचुरल वेजिटेशन को देखोगे, बहुत अच्छी वहाँ की वेजिटेशन होगी। और अगर किसी तरह कहीं पर भी अगर ऐसा होता है कि वहाँ का जो मिट्टी का जो टेक्सचर है वो अच्छा नहीं है, उसमें इतना उपजाऊ नहीं है, या वो वहाँ का टेम्परेचर ऐसा है जो कि उस मिट्टी को सपोर्ट नहीं करता है, तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे। उसके बाद सेकेंड हमने देखा था क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में क्या क्या एलिमेंट हैं जो अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला टेम्परेचर। हमने अभी ऊपर भी जाना था कि अगर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर और ज़्यादा कम होता जाता है, तो उसकी वजह से वेजिटेशन बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में पेड़ पौधों का पनपना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तो होता है माउंटेनियस रीजन्स में हम जितनी ऊंचाई में जाते हैं उतना ज़्यादा पेड़ पौधे कम होते जाते हैं, और दूसरा होता है हम जब डेजर्टेड एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर भी पेड़ पौधे बहुत कम हो जाते हैं वहाँ के एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर की वजह से। फिर हमने देखा था सूर्य का प्रकाश, मतलब जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नियमित रूप से बना रहता है वहाँ पर गर्मी के टाइम पर पेड़ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर अगला एलिमेंट था वर्षण यानी कि बारिश। तो जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश, उन क्षेत्रों में काफ़ी घने वन दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पर हमने दो परियोजना कार्य के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने शुरू किया था वनस्पति के प्रकार को पढ़ना। तो हमने अलग अलग फॉरेस्ट के बारे में जाना था कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, जिसमें से कुछ मेन टाइप्स थे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा था उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, चौथा था पर्वतीय वन और पांचवा था मैंग्रोव वन। तो इसमें से हमने सबसे पहले जब पढ़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, तो हमने ये जाना कि ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, और यहाँ के पेड़ पौधे जो हैं वो अलग अलग ऊंचाइयों में आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने पेज नंबर 45 में यहाँ पर ये फिगर 5.2 देखा था। अब ये होता क्यों है, इसका कारण भी हमने जाना था कि जो सबसे ऊंचे पेड़ होते हैं उनको पर्याप्त सनलाइट मिलती है, सूर्य की रोशनी मिलती है, जिसकी वजह से वो और बढ़ते चले जाते हैं और वो इतने घने हो जाते हैं कि उनके अंदर से उनके बीच में से बहुत कम सनलाइट फिल्टर होके नीचे के पेड़ों तक पहुँच पाती है। और फिर एक बार ऐसा समय आता है कि एकदम ज़मीन तक जो सनलाइट है वो पहुंच नहीं पाती और एक कैनोपी फॉर्म कर लेती है, एक छत जैसा निर्माण हो जाता है पत्तियों का, जिससे पूरा जंगल ढक जाता है। तो जो दिन का समय है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा अंधेरा लगता है इन छायादार पत्तियों की वजह से। फिर हमने पेज नंबर 46 में डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि हमारे भारत में कौन से फॉरेस्ट का कहाँ पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, और सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट का था, सबसे ज़्यादा था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। देन सेकेंड हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में, जो कि 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर जहाँ पर बारिश होती है उन रीजन्स में पाए जाते हैं, और ये गर्मी के मौसम में 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी जो लीव्स है उसको शेड कर देते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो ज़्यादा। देन हमने पढ़ा था कटीले वन तथा झाड़ियाँ। कटीले वन और झाड़ियाँ जो होती हैं ये हमको ज़्यादातर डेजर्टेड सॉइल में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। देन वी स्टडीड पर्वतीय वन। पर्वतीय वन सारे पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था मैंग्रोव वन के बारे में, तो जो कि ज़्यादातर कोस्टल रीजन्स में होते हैं और इन जो पेड़ होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं ये पानी के अंदर होती हैं। जितने भी डेल्टा वाले नदियों वाले जितने भी इलाके वहाँ पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखाई देंगे। फिर हमने वन्य प्राणियों के बारे में जानना शुरू किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि हमारे यहाँ जितने भी जीव है उनकी 90,000 से ज्यादा हमको स्पीशीज देखने को मिलती हैं, जिसमें से 2,000 से ज्यादा अधिक पक्षियों की स्पीशीज हैं और मछलियां हमारे यहाँ 2,546 स्पीशीज में हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर, हमारे ये आज की क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे से स्टार्ट करेंगे एंड वील वाइंड अप दिस चैप्टर। टिल देन प्लीज कीप रिवाइजिंग।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।